ये आकाशवाणी है। अब आप चंद्रिका जोशी से समाचार सुनिए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा के साथ रूस यूक्रेन संघर्ष और इसके व्यापक परिणामों पर नई दिल्ली में चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार किया गया। उन्होंने कहा कि भारत यूक्रेन के साथ द्विपक्षीय सहयोग सहित समग्र संबंधों को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यूक्रेन के विदेश मंत्री कल दो दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना अपने आप में बड़ी आवश्यकता है और सरकार सभी गांवों तक डिजिटल सुविधाएं पहुंचा रही है। बिल गेट्स के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा में प्रौद्योगिकी अपनी बड़ी भूमिका निभा सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने एकाधिकार को रोकने के लिए प्रौद्योगिकी लोकतंत्रीकरण किया है। यह जनता द्वारा और जनता के लिए है। सरकार विभिन्न समुदायों के भीतर उभरती प्रतिभाओं को अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में महिलाएं नई तकनीक अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना बहुत सफलतापूर्वक चल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुरुपयोग पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बिना उचित प्रशिक्षण के ये किसी को दे दी जाए तो इसका दुरुपयोग होने की संभावना है। महाराष्ट्र में कांग्रेस की को रामटेक लोकसभा सुरक्षित सीट से अपना उम्मीदवार बदलने के लिए बाध्य होना पड़ा है। कांग्रेस ने इस सीट से रश्मि बर्वे को मैदान में उतारा था, लेकिन सामाजिक न्याय विभाग की जांच समिति ने उनके जाति प्रमाण पत्र को अमान्य घोषित कर दिया। इससे श्रीमती बर्वे उम्मीदवारी से अयोग्य हो गई हैं। अब कांग्रेस ने उनके पति श्याम राव बर्वे को उम्मीदवार बनाया है। इस सीट के लिए नामांकन 27 मार्च को समाप्त हुआ था। पर्चों की जांच 28 मार्च को की गई थी। श्री श्याम राव बर्वे ने अपनी पत्नी रश्मि बर्वे के साथ स्थानापन्न उम्मीदवार के रूप में अपना पर्चा दाखिल किया था। श्रीमती बर्वे ने अपने जाति प्रमाण पत्र की अस्वीकृति को बम्बई उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। मामले की सुनवाई 1 अप्रैल को होगी। बिहार में विपक्षी महागठबंधन ने आज 40 लोकसभा क्षेत्रों के लिए कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और वाम दलों के बीच सीटें साझा करने की घोषणा की है। सीटों के बंटवारे के अनुसार लालू प्रसाद के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस अपने 9 उम्मीदवार उतारेगी, जबकि वाम दलों को 5 सीटें दी गई हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा के पहले चरण में 6 सीटों पर भरे गए सभी 107 नामांकन वैध पाए गए हैं। उम्मीदवार कल तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। मध्य प्रदेश में सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा सीटों पर 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 4 जून को होगी। निर्वाचन आयोग का सी विजिल ऐप मतदाताओं के बीच लोकप्रिय हो रहा है। अब तक आम चुनाव की घोषणा के बाद से इस ऐप पर 79,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि 99% से अधिक शिकायतों का समाधान कर दिया गया है। सरकारी ई मार्केट GeM के माध्यम से चालू वित्त वर्ष में रिकॉर्ड 4 लाख करोड़ रुपए का सकल कारोबार हुआ है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 2 गुना है। नई दिल्ली में आज GeM के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीके सिंह ने बताया कि इससे GeM पोर्टल की डिजिटल क्षमताओं का पता चलता है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की मृत्यु हो गई है। ये दुर्घटना लगभग आधी रात को जम्मू से श्रीनगर जा रही बस के जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गहरी खाई में गिरने से हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में लोगों के मारे जाने पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में शोकग्रस्त परिवारों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। इंडियन प्रीमियर लीग IPL क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।